मैं जानती हूँ दादू कि डैड बुरे इंसान नहीं हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरा ख्याल भी रखते हैं, मेरी सेफ्टी के लिए परेशान रहते हैं। उन्होंने मेरे बोलने से पहले मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन कमी रही, प्यार की कमी रही। मॉम नहीं थी, मैं उनका प्यार डैड में ढूंढती थी, लेकिन उनसे तो मुझे डैड का प्यार भी ठीक से नहीं मिला। उन्होंने मुझे सब दिया, बस अपना प्यार, अटेंशन और टाइम देना भूल गए, और मुझे तो यही चाहिए था। पता है आपको, स्कूल टाइम पर और अभी भी मेरे फ्रेंड्स जब अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपने मॉम डैड की बातें करते हैं, तो मुझे मॉम के साथ डैड की भी कमी का एहसास होता है। उनके पास इतनी सारी बातें होती हैं और मेरे पास कोई एक भी ऐसी मेमोरी नहीं जिसे मैं याद करके मुस्कुराऊं, सबसे शेयर करके उन्हें बता सकूं कि मेरे डैड भी मुझसे प्यार करते हैं। नित्या की आंखों में सूनापन उभरा और चेहरे पर उदासी, दिल में एक टीस सी उठी। ये कसक हमेशा से उसके वजूद का अहम हिस्सा रही, बस उसने कभी किसी को बताया नहीं। फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा वही किया जो डैड ने कहा, उनकी हर बात मानी, क्योंकि वो मेरे डैड हैं, मुझसे बड़े हैं, उन्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो मेरे लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे प्रॉब्लम हो या मैं हर्ट हूँ। लेकिन अब जो डैड कर रहे हैं वो गलत है। डैड मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये मेरी लाइफ है ना, तो डिसीजन भी तो मेरा होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, किसके साथ शादी करनी है और किससे नहीं। लेकिन डैड तो पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। पहले उस तेज से मेरा रिश्ता जोड़ दिया और अब कहकर गए हैं कि शादी उसी से होगी जिससे वो चाहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, उन्होंने भी तो मॉम से लव मैरिज की थी, फिर मुझे प्यार करने की परमिशन क्यों नहीं है। नित्या बच्चों जैसे मुंह फुलाकर दादाजी से मिस्टर शेरगिल की शिकायत लगा रही थी। उदासी अब कहीं खो गई थी, अब तो वो नाराज थी और शायद परेशान भी। दादाजी की अनुभवी आंखें जैसे कुछ भांप गईं, लेकिन उन्होंने अभी चुप रहना ही ठीक समझा। आप उनकी चिंता मत कीजिए, आपकी शादी उसी से होगी जिन्हें आप चाहेंगे। अब जाइए, जाकर हाथ मुंह धोकर आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, बाकी की बातें उसके बाद करेंगे। नित्या ने झट से सर हिला दिया, आज जल्दी उठी थी तो भूख भी लग गई थी। नित्या तुरंत ही बाथरूम में घुस गई। दादाजी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, वो परेशान थे, शायद कुछ सोच रहे थे। बाथरूम में मिरर के सामने खड़ी नित्या के चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी, आंखों के आगे से मानव का चेहरा जा ही नहीं रहा था। उसके बोले झूठ के सामने आने के बाद उसे मानव से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। इतना कुछ हुआ लेकिन मानव ने एक शब्द नहीं कहा, बाहर आया भी तो क्या कहा। उसे साउंड प्रूफ कार की वजह से कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, समझ भी नहीं आया। लेकिन जिस तरह से वो नजरें फेर कर अंदर गया, दोबारा पलट कर उसे देखा तक नहीं और उसके जाने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया, नित्या का दिल जैसे कटकर रह गया। वो परेशान थी, बेचैन थी, उसे मानव की चिंता हो रही थी। तुम मुझसे नाराज होगे ना, तुमने इतनी बार मुझसे मेरे बारे में सवाल किए लेकिन मैंने जवाब नहीं दिए, और जो बताया वो भी झूठ था। तुम तो पहले ही गुस्सा हो गए थे कि मैं तुमसे अपने बारे में बातें छुपा रही हूँ, अब तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे, तभी तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, मुझसे लास्ट टाइम बाय भी नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगी, तुम्हारी नाराजगी गुस्सा सब दूर कर दूंगी। अभी तो थोड़ा मुश्किल है, डैड बहुत गुस्सा है ना, वो मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं जल्दी ही आऊंगी तुमसे और आई से मिलने। नित्या मुस्कुराई, अभी दूर थी लेकिन ये उम्मीद ही उसके लिए काफी थी कि वो उससे दोबारा मिलेगी। बट मैं वापस वहां जाऊंगी कैसे, मुझे तो एड्रेस पता ही नहीं, मानव का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। नित्या की मुस्कान गायब हो गई, उसने मुंह लटका लिया। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, होंठों पर मीठी सी मुस्कान बिखर गई। यस, मैं ड्राइवर अंकल को कहूंगी कि मुझे वही ले चलें जहां से मुझे लेकर आए थे। नित्या खुशी खुशी फ्रेश हुई। वो बाहर आई तो दादाजी ने भी अपनी परेशानी छुपा ली। दादा पोती आज काफी दिनों बाद साथ में नाश्ता कर रहे थे। नित्या खा तो रही थी लेकिन आज उसके चेहरे पर वो संतुष्टि के भाव नहीं थे जो अनीता जी का बनाया खाना खाते हुए नजर आता था। माँ के हाथ का स्वाद जो उन्हें हाथों में था, यहाँ मिसिंग था, और साथ ही मिसिंग था उनका प्यार। वो जितने प्यार से खाना बनाया करती थी उतने ही प्यार से खिलाती भी थी। उनका प्यार और अपनापन ही था जो साधारण से कहने को भी स्पेशल बना देता था, जिसके सामने ये स्पेशल ब्रेकफास्ट फीका पड़ गया था। नित्या को उनकी कमी शिद्दत से खली। ब्रेकफास्ट उसका उन्हीं के साथ तो होता था, मानव तो उसके उठने तक ऑफिस जा चुका होता था, फिर बचते थे वो और अनीता जी। दोनों खूब सारी बातों के बीच नाश्ता करती थीं, कभी कभी टीवी देखने बैठ जाती। अनीता जी थोड़ा थोड़ा और बोलकर उसे पेट भरकर खाना खिलाती थीं। सब याद करते हुए नित्या के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए जो दादाजी की नजरों से छुप नहीं सके। नित्या, क्या हुआ बेटा, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है?
दादू, मुझे आई की याद आ रही है, पता है वो इतनी सैड थी, घर पर बस हम दोनों ही रहते थे, अब मैं यहाँ आ गई तो वो अलोन हो गई होंगी। नित्या की बातें सुनकर दादाजी की भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। उन्होंने गहरी निगाहों से उसे देखा। आई? हाँ दादू, आई मानव की आई, मेरी आई। आई कहती थी उन्हें अच्छा लगता है जब मैं उन्हें आई कहती हूँ, मैं उनकी बेटी जैसी हूँ ना, इसलिए। नित्या अपनी सारी उदासी भूल गई, एक बार फिर होंठों पर मीठी से मुस्कान सज गई। दादाजी के मन में एक साथ कई सवालों ने जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पेशेंस से काम लेते हुए आराम से सवाल किया, बेटा आप इतने दिनों कहाँ थी, किसके साथ थी? दादू मैं मानव के साथ ही तो थी, आपको पता है जिस दिन मैं घर छोड़कर भागी थी उस दिन मैं फंस गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, अपने किसी फ्रेंड से हेल्प भी नहीं ले सकती थी, फोन भी ऑफ कर दिया था वरना डैड मुझे पकड़ लेते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं समझ आ रही थी जहाँ जाने पर डैड को मेरे बारे में पता न चले। रात हो गई थी और मैं रोड पर घूम रही थी, तभी मुझे कुछ गंदे लड़के मिल गए, वो मुझे देखकर गंदे गंदे कमेंट करने लगे, मैंने उन्हें इग्नोर किया और जाने लगी, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे खींचकर एक गली में ले गए जहां अंधेरा था, वो बहुत सारे थे, मैं तो बहुत डर गई थी, हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और किसी तरह उनसे बचकर भागी थी जब मानव से मेरी टक्कर हुई। मानव ना बहुत अच्छा है, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, फिर भी उसने मेरी हेल्प की, मेरे लिए उन गुंडों से लड़ा, उसे चोट भी लग गई थी, वो मुझे उन गुंडों से बचाकर ले गया, वो तो मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया और उसे झूठ कह दिया कि मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ और वो जबरदस्ती मेरी शादी मेरे से डबल एज के आदमी से करवा रहे थे, मैं उससे बचकर भागी हूँ, मेरे पास और कोई जगह नहीं जहाँ मैं जा सकूँ।
तब न मेरे सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मानव मुझे अपने घर ले गया, वहाँ उसकी आई भी थी, वो दोनों न बहुत स्वीट हैं, आप उनसे मिलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं उनके साथ ही थी। मानव मेरे लिए इतनी सारी ड्रेसेस लेकर आया था, आई मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे मनु से भी ज्यादा प्यार करती थी, हम दोनों बहुत सारी बातें करते थे, मैं पूरे दिन उनके साथ रहती थी, आई मुझे इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाती थी, मानव भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे उनके साथ फैमिली वाली फीलिंग आती थी। मैं वहीं रहती लेकिन डैड आ गए, उनकी गार्ड्स ने मानव के सर पर गन पॉइंट कर दी और मुझे वापस आना पड़ा। शुरू में मानव और रनीता जी के बारे में बताते हुए नित्या खुशी से चहक रही थी, लेकिन आखिर में आते ही उसका मुंह बन गया। उसे मिस्टर शेरगिल का मानव को गन पॉइंट पर रखकर उसे यहाँ आने पर मजबूर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। नित्या बेटा, क्या आप उन्हें पसंद करती हैं? दादू ने अचानक सवाल किया, जिसे सुनकर नित्या चौंक गई और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड।